विषय है गुरु परायणता। ये विषय उन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है जो वास्तव में गंभीरता पूर्वक इस अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं या सही ईश्वर भक्ति करना चाहते हैं। हम यदि दुनिया की परंपरा देखें, ज्यादा पीछे ना जाते हुए योगीराज श्री कृष्ण के बाद का यदि पीरियड देखें, तो जितने भी हिंदू लोग हैं या सनातन धर्मी हैं, उन सब की आस्था श्री कृष्ण पर है। और ये भी जानते हैं कि श्री कृष्ण का संदेश गीता में लिखित रूप में उपलब्ध है। तो कृष्ण के जीवन को वो एक आदर्श जीवन मानते हैं, उनको अपना गाइड समझते हैं। उसी प्रकार आप देखिए, जितने जैनी लोग हैं वो भी ऋषभदेव महावीर को मानते हैं, उनकी भी वाणी उपलब्ध है। जितने क्रिश्चियंस हैं वो ईसा मसीह को मानते हैं, उनके विचार भी बाइबल में उपलब्ध हैं। और उसके आगे चलते हैं तो जितने भी मोहम्मदंस हैं वो मोहम्मद साहब को मानते हैं, उनके लिए भी कुरान उपलब्ध है। गुरु नानक का पीरियड देखें, उसके बाद जितने भी सिख हैं वो गुरु नानक को मानते हैं, उनकी वाणी भी उपलब्ध है। इसका मतलब जो भी सत्पुरुष या पैगंबर या अवतार जब धरती पर आता है तो वो मार्गदर्शन साथ लेकर आता है, जो ग्रंथों के रूप में शास्त्र के रूप में हमको उनको देकर चले जाते हैं। लेकिन संसार क्या करता है? संसार उन सत्पुरुषों को तो मानता है लेकिन उनके मार्गदर्शन को सही रूप में समझने की कोशिश नहीं करता। जैसे कि हम श्री कृष्ण को देख लें, कितनी पूजाएं होती हैं कृष्ण के नाम पर, कितने त्योहार होते हैं, कितने आयोजन होते हैं, लेकिन कृष्ण का जो संदेश है वो तो गीता में उपलब्ध है, जो सही संदेश है, जिसमें कोई मिलावट नहीं हुई, जिसमें कोई खोट नहीं आया। लेकिन उस गीता को समझने की कितने लोग कोशिश करते हैं? कृष्ण की तो हमने पूजा शुरू कर दी लेकिन कृष्ण खुद गीता में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अजो अपि सन अव्यात्मा भूता नाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्माय। तो भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं ये बात, वो कह रहे हैं कि अजन्मा और अविनाशी होने पर भी और सारे प्राणियों का ईश्वर होने पर भी मैं प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्माय, मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट हो। क्यों प्रकट होते हैं भाई, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ईश्वर ही जानता है कि मनुष्य बिना गुरु के बिना गाइड के चल नहीं सकता। अरे संसार में भी कोई साधारण सी विद्या सीखते हैं, कोई कला सीखते हैं, गुरु चाहिए होता है, गाइड चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता, एक्सपर्ट चाहिए होता है, उसके बिना हमारा काम होता ही नहीं। तो जब आप ईश्वर प्राप्ति करने चले, संसार के दुख 100% खत्म करने चले, तो क्या किसी गुरु की आवश्यकता नहीं? इसीलिए वो जो अंतर्यामी परमेश्वर है वो अंतर्यामी। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन को कह रहे हैं कि वो मैं हृदय में निवास करता हूं। तो अंतर्यामी ईश्वर होते हुए भी मेरे अंदर है वो, लेकिन मेरा उनसे कोई परिचय नहीं है, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। मेरे जो संसार में दुख का कारण है वो मूल कारण ये है कि मैं अंतर्यामी परमेश्वर को नहीं जानता, उनसे मेरा संबंध ही कोई नहीं, और संसार में मैं उनकी खूब पूजा कर रहा हूं। तो वो इसीलिए आते हैं कि तेरी पूजा ठीक हो जाए, तेरा मार्गदर्शन ठीक हो जाए। तो उसको अपनी जिंदगी की समझ आ जाए, इस संसार की समझ आ जाए। इसीलिए जब तक मनुष्य जितने भी अवतार हैं, जितने भी सदगुरु हुए आज तक धरती पर आए, जब तक वो उनको अपना गुरु बनाता नहीं, तब तक वो गलतियां करता ही रहेगा। पूजा पाठ में भी गलतियां करता रहेगा, संसार के चलन में भी गलतियां करता रहेगा। तो इसीलिए महाभारत में आता है कि धर्मस्य तत्त्वम् निहितम् गुहायाम् महाजनो येन गता सापन। धर्म तत्व को समझना, उसको जानना, ये बड़ा ही गहन विषय है। महाजनो येन गता सापन था, लेकिन जिस रास्ते से होकर महापुरुष गए हैं, सत्पुरुष गए हैं, उस रास्ते को यदि हम समझ लें, उस महापुरुष को समझ लें, तो ये धर्म को समझना आसान है। असल में ये जितना भी धर्म है, जितना भी पूजा पाठ है, ईश्वर की उपासना है, ये सीखी ही उन अवतारों से जाती है। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, संसार में क्या चल रहा है, उनसे उपासना सीख तो नहीं रहे हैं, हमने उनकी ही उपासना शुरू कर दी। जो आपको उपासना ईश्वर की सिखाने आए थे वो तो नहीं सीखी हमने, हमने उन सत्पुरुषों की ही उपासना शुरू कर। इससे हानि क्या हुई हमारी, हानि ये हुई कि उनका जो संदेश था उसको समझने की जरूरत नहीं समझी हमने। अब जब कृष्ण की पूजा करके गीता की जरूरत नहीं है मुझको, मेरा काम तो बड़ा आसान हो गया। लेकिन तेरा काम आसान नहीं हुआ, तेरा काम और ज्यादा कठिन है। ईश्वर की पूजा से तेरा कल्याण संभव था, अब तू उससे वंचित रहे, अब वो तेरा रास्ता भी बंद हो गया। क्योंकि कृष्ण की असली उपासना क्या थी, असली उपासना यह थी कि तू कृष्ण के संदेश को समझता। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अहम आत्मा गुडाकेश, हे अर्जुन मैं आत्मा हूं। और हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं तेरे हृदय में निवास करता हूं। कृष्ण तो ये कह रहे हैं, तो मैं कौन से कृष्ण की पूजा कर रहा हूं, तो गीता का मैं खुद उल्लंघन कर रहा हूं, कृष्ण के संदेश का मैं खुद उल्लंघन कर रहा हूं, और वह मैंने ये पाल रखा है, मैं तो कृष्ण का बराबर। तो अब बताइए, तो फिर तो यही करोगे आप, जुलूस निकालोगे, धार्मिक जुलूस लड़ोगे, तुम कभी मोहम्मद शाह के नाम से लड़ोगे, कभी कृष्ण के नाम से लड़ोगे, कभी राम के नाम से लड़ोगे, सारी जिंदगी तुम धर्म के लिए लड़ते रहोगे, धर्म तुमको शांति नहीं देता है, जो समाज में देखने में आ रहा है। इसीलिए मान लिया मेरी कृष्ण पर श्रद्धा है, कोई मना नहीं करता, लेकिन कृष्ण को आप गुरु बनाओ। कृष्ण को यदि गुरु बनाओगे, अपना गाइड बनाओगे, तब कृष्ण क्या कह रहे हैं वो आप सीखने की कोशिश करो। जब कृष्ण पर श्रद्धा है तो नेचुरली सीधी सी बात है, सबको पता है कि कृष्ण का संदेश गीता में है, तो ये वो गीता क्या संदेश दे रही है, क्या सिखा रही है, वो आप सीखने की कोशिश करो। जब सीखने का मतलब हो गया कि उसके अनुसार फिर आप धर्म का पालन करोगे, ईश्वर की उपासना करोगे और अपने दुखों को दूर करोगे। तो इसीलिए गुरु परायणता जरूरी है। मतलब यह है, गुरु परायणता का मतलब होता है आपकी लाइफ गुरु पर डिपेंड कर रही है, अब आपका फ्यूचर गुरु पर डिपेंड कर रहा है। इसके अपोजिट क्या होता है, इसके अपोजिट होता है देह परायणता। मेरी जिंदगी जब मेरे शरीर पर आधारित है, शारीरिक जीवन मेरी जिंदगी है, तो ये देह परायणता। इसके उलट जब ईश्वर आप समझते हो कि ईश्वर से मेरे दुख दूर होंगे, ईश्वर की उपासना करने से मुझको आनंद मिलेगा, मुझको मोक्ष मिलेगा, या मैं बंधन से मुक्त होऊंगा, तब वो ईश्वर जब गुरु रूप में आता है, अवतार रूप में आता है, इसीलिए आप उस अवतार की बात मानते हो, उसको अपना गुरु बनाते हो, उसको अपना गाइड बनाते हो, तब आपका कल्याण संभव हो पाता। इसीलिए इस गुरु प्रायणता को सीखने के लिए सबसे पहले ये सीखें कि गुरु प्रायणता है क्या वास्तव, सरल शब्द
गुरु प्रायणता का मतलब होता है गुरु निर्णय के अनुसार सोचना और उसके अनुसार सतमार्ग पर चलना। गुरु प्रायणता का मतलब होता है गुरु निर्णय के अनुसार सोचना और उसके अनुसार सतमार्ग पर चलना। हर मामले में गुरु का निर्णय ही आपको गाइड करेगा। जैसे कि महाराज जी ने, महात्मा मंगत राम जी ने गुरु क्या होता है इसके बारे में एक वचन लिखा, एक चैप्टर है ग्रंथ समता विलास में गुरुपद सिद्धांत, उसका पहला ही वचन। क्योंकि गुरु को भी हम शरीर करके तो जानते हैं, ये इसका नाम है, इसका रूप है। देखिए महाराज जी क्या लिख रहे हैं, देखिए जो खुद गुरु है वो क्या लिख रहा है। महाराज लिख रहे हैं कि वास्तव में गुरु शब्द रूप परमेश्वर है जो घट घट व्याप रहा है, जो तमाम भ्रम अंधकार से निर्मल है और तमाम भ्रम अंधकार को नाश करने वाला है। अब ये देखिए गुरु क्या कह रहा है, गुरु वास्तव में शब्द रूप परमेश्वर है जो घट घट व्याप रहा है, हर शरीर के अंदर वो व्याप रहा है। अब इसका मतलब वास्तविक गुरु तो अंदर है, वही गीता कह रही है कि अजो अपि सन अव्यात्मा भूता नाम ईश्वर आप, कि मैं अजन्मा और अविनाशी होने पर भी, सारे प्राणियों का ईश्वर होने पर भी मैं अपनी योग माया से प्रकट होता। तो वो जो उनका शरीर है वो योग माया है, वो वास्तविक शरीर वास्तविक गुरु नहीं है। इसलिए माई ने कहा भी सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार तू आज्ञाकारी होए के झटका पा। तो गुरु ही आपको बताता है कि गुरु कौन है, लोग क्या बताएंगे आप। इसलिए गुरु क्या कह रहा है वो बात हमको पढ़नी पड़ती है, वो सीखनी पड़ती है। तो कृष्ण ने जो बात कही है वो गीता में लिखी हुई है, महाराज जी ने जो बात कही वो संत अभिलाष में लिखी हुई है, और अन्य सत्पुरुषों ने उनके जीवन से ही पता लगता है। जैसे कि महर्षि रमण कहा करते थे कि गुरु केवल एक है। अब देखिए ये गुरु की बात है, महर्षि कह रहे हैं गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर है। अब महाराज जी की बात जो शब्द रूप परमेश्वर है और महर्षि रमण कह रहे हैं एक ही बात है या नहीं। और देखिए रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद के गुरु थे वो क्या कह रहे हैं, सारे सत्पुरुषों की एक ही बात होती है, उनके कहने के तरीके अलग अलग होते हैं। एक दिन क्या हुआ, जिस समय महर्षि रमण को गले का कैंसर हो गया और अंतिम अवस्था पास थी, ये हालत थी उनको एक पानी भी नहीं पी सकते, तो विवेकानंद के मन में आया ये कैसे ईश्वर है, ये गुरु तो ईश्वर होता है सर्वसमर्थ होता है, ये कैसे ईश्वर है जो इतने लाचार हैं कि एक गिलास पानी भी ये नहीं पी सकते। अब रामकृष्ण परमहंस तो अंतर्यामी है ना, वो गुरु गुरु है वो तो वो उसके मन की बात समझ गए। अब शिष्य के अंधकार को दूर करने के लिए वो क्या कहते हैं, वो कहते बोले कि नरेंद्र जो राम थे जो कृष्ण थे वही इस शरीर में रामकृष्ण, जो राम थे जो कृष्ण थे वही इस शरीर में रामकृष्ण। इसका मतलब राम कृष्ण और रामकृष्ण ये तीन शरीर हैं, अलग अलग हैं, लेकिन उन शरीरों के अंदर जो स्थित आत्म सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता है, गाइड वो कर रही है, आप वाणी वो प्रकट कर रही है। इसीलिए यदि हमारी दृष्टि शरीर पर अटक गई तब हम गुरु को समझने में गलती कर गए। गुरु का शरीर सामने होने पर भी मेरे अंदर हर वक्त ये भाव बना रहना चाहिए कि ये साक्षात परमेश्वर है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में संदेश दिया, गीता के आखिरी 18वें अध्याय में जब बात आई कि ये गीता ज्ञान जो भी अन्य लोगों तक पहुंचाएगा वो मेरा सबसे प्रिय भक्त होगा, अर्जुन को ये बात कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कंडीशन लगाई किसको ये गीता ज्ञान दिया जाए, उन्होंने कहा जिसके अंदर मेरे प्रति ईश्वर भाव हो, जो कृष्ण के शरीर को ईश्वर का शरीर करके एक्सेप्ट, उसको ये गीता ज्ञान दिया जा सकता। इसका मतलब हो गया यदि मेरे किसी भी गुरु पर श्रद्धा, यदि वो पूर्ण ब्रह्म ऋषि है, अवतार है, तो उसके प्रति मेरे यदि ईश्वरीय भाव है कि ये साक्षात परमेश्वर है, इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो ईश्वर ने कहा है, तब वो उनकी बात पर विश्वास करके उसको अमल में लाने की कोशिश करता है। लेकिन विश्वास पक्का होना चाहिए। यदि विश्वास में ही कमी है तो ये मार्ग इतना बारीक है कि आप इस पर नहीं चल सकते। इसलिए देखिए महाराज जी का एक पत्र है जो उन्होंने लिखा था, उसमें चंद सेंटेंस में उन्होंने इस बात को समझाया है। ध्यान से सुने, प्रेमी जी, गुरु शिक्षा का निर्णय यही है कि कई किस्मों के मनमाने निश्चय जो ना सिद्धि और ना शांति के देने वाले हैं, उनसे छुटकारा हासिल करके एक तत्व वस्तु में मन को लगाया जाए, जिससे मेहनत सफल हो जाए। ईश्वर चिंतन जो अंतर्मुख धारणा से किया जाता है, उसका जल्दी ही असर मन पर होने लगता है, और ईश्वर प्रेम की शक्ति के बल से अपने आप पर काबू पा लेता है। मगर गुरु वचन का विश्वास अटल होना चाहिए। क्यों, इसके लिए लिख रहे हैं वो, यह मन एक बड़ा कठिन शक्ति है। इसके दमन करने के वास्ते सतमार्ग, सत पुरुषार्थ और निर्मल प्रेम का बोध जरूरी होना चाहिए। तभी बुद्धि नाम चिंतन के बल से मन पर काबू पा जाती है और सत स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। ईश्वर अधिक विश्वास और प्रेम देवे, जिससे अपने मानसिक दोषों को पवित्र करके निज स्वरूप आत्म आनंद को अनुभव कर लेवे। ईश्वर नित सहायक होवे। तो कह रहे हैं कि यदि गुरु के वचन पर आपको विश्वास दृढ़ नहीं है, तब हर मामले में आप गलती करोगे। इसीलिए गुरु बनाया था। देखिए माताएं तो बहुत सारी दुनिया में है। देखिए मेरी अपनी माता होती, अपनी माता की बात को मैं कितनी श्रद्धा से सुनता हूं, कितने प्रेम से सुनता हूं, और जी जान से कोशिश करता हूं कि माता की आज्ञा का उल्लंघन ना किया। तो जो मेरा अपना हो जाता है उसकी बात मैं मानने को तैयार रहता हूं। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी। तो ईश्वर सर्वव्यापक है, मैं जानता हूं सर्वव्यापक, मेरे अंदर भी है, जो सब बैठे हैं सबके अंदर भी है, लेकिन उस ईश्वर से मेरा संबंध कोई नहीं। लेकिन वही ईश्वर जब गुरु रूप में आया है, और जब मैं इस चीज को समझता हूं कि ये वास्तव में साक्षात ईश्वर है, तब मैं उस अपने गुरु की बात को सीखने की, समझने की और उस पर चलने की पूरी दिल से कोशिश करता हूं। लेकिन मेरे ये भाव पहले आना चाहिए कि ये मेरा गुरु है, मैं अपने गुरु की बात। इसीलिए शिष्य का गुरु के साथ संबंध बन जाता है, लेकिन ईश्वर के साथ संबंध नहीं बनता। तो वो आया ही इसलिए है गुरु बनकर कि वो अंतर्यामी ईश्वर के साथ आपका संबंध स्थापित करे। खुद ही कह रहा है कि मैं तेरे अंदर, भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं, महात्मा मंगतराम जी ये कह रहे हैं। तो इसीलिए जब तक गुरु की बात को हम नहीं मानते, तब तक ये गुरु परायणता हमारी प्रारंभ नहीं हो सकती। तो गुरु परायणता का प्रारंभ कहां से होता है कि गुरु निर्णय के अनुसार सोचना और उसके अनुसार सतमार्ग पर चलने की कोशिश करना। और गुरु जिसको आप मान लेते हो, एक और रहस्य की बात, हो सकता है वो शरीर रूप में आपको उपलब्ध ना हो। जैसे मान लिया आज मैं डेट में मैं कृष्ण को गुरु बनाऊं अपना, शरीर रूप में तो उपलब्ध नहीं है वो, लेकिन यदि मैंने उनकी बात मानकर उनको पूरी दिल से कोशिश की है, उस पर चलने की मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूं, यदि मेरी जरूरत हुई तो वो शरीर रूप में प्रकट होकर भी मेरा मार्गदर्शन आज भी वो कर सकते। इसीलिए जो अवतार हो जाता है वो हमेशा हमेशा के लिए वो लाइव गॉड है, वो मर नहीं जाता। जैसे कि इसको एग्जाम्पल से समझो, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा माँ, और थे तो वो पति पत्नी, लेकिन उनका कोई शारीरिक संबंध नहीं था जैसे पति पत्नी का आम होता है। तो रामकृष्ण परमहंस ने उनको भी ईश्वर भक्ति में लगा दिया, लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस की डेथ हो गई, उसके पश्चात जैसा बंगाल में रिवाज है, उस समय वो लाल किनारी की साड़ी पहनती थी, हाथ में उनके चार कंगन थे जो रामकृष्ण परमहंस ने खुद बनवाए थे, उनको जो सैली मिलती थी मंदिर से, पुजारी थे वो वहां पर। तो उनके मन में एक ख्याल आया कि रामकृष्ण परमहंस तो रहे नहीं अब, तो मैं ये कंगन उतार देती, और ये लाल किनारी की साड़ी भी नहीं, क्योंकि बंगाल में विधवाएं सफेद साड़ी पहनती हैं, तो वो मैं धारण कर लेती, एक साड़ी भी मैं उतार देती। ये बात वो मन में सोच रहे, रामकृष्ण परमहंस उनके सामने खड़े हो, और खड़े होकर कहते हैं, शारदा मैं कहीं गया नहीं हूं, बस तू ये समझ ले तेरे बराबर वाले कमरे में रह रहा हूं, इसलिए तू विधवा नहीं हुई, तूने इस कंगन को कभी नहीं उतारना, और इस साड़ी को भी तूने नहीं बदलना, यही तूने पहनी। बेचारी वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, वो कौन से शास्त्र उनको समझाए जाते, लेकिन गुरु है ना वो पति नहीं थे, उनके गुरु थे, पूरा उनको फेथ था, विश्वास था, इसलिए गाइड कौन करेगा, गुरु ही तो गाइड करेगा। वो पढ़ ही नहीं सकती थी शास्त्रों को, तो गुरु ने एक ऐसी चीज उनके आगे रख दी जो कभी जिंदगी वो नहीं भूल सकती। अरे सामने खड़े होकर, जो उनको पता है कि डेथ हो चुकी इनकी, लेकिन वो सामने खड़े होकर ये बात कह रहे हैं कि तू ये समझ ले मैं बराबर वाले कमरे में रह रहा हूं, तो क्या अविश्वास हो सकता है? लेकिन ये काम गुरु ही कर सकता है। इसीलिए जब अवतार धरती पर आता है, तो चाहे वो उसको संसार से विदा हुए, उसके शरीर को हजार साल क्यों ना बीत गए, 100 वर्ष क्यों ना बीत गए, वो हमेशा उपलब्ध, लेकिन कब? जब आप उसकी बात मानकर चलने को तैयार हो, उस पर आपका श्रद्धा विश्वास बना रहे, तभी वो हमेशा आपको गाइड करेगा, गलतियों से भी बचाएगा। चलो ये तो शारदा माँ तो साधारण सी स्थिति, विवेकानंद तो बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े शागर बुद्ध थे, सारी दुनिया में जो है वो हिंदुत्व का डंका पीटा है, सारा सही धर्म समझा है। उनके मन में भी एक बार जो गाजीपुर का भ्रमण कर रहे थे, संन्यास ले चुके थे महर्षि ब्रह्म की, रामकृष्ण परमहंस की डेथ हो चुकी थी, जब भारत भ्रमण पे थे तो गाजीपुर में एक बाबा हरि बाबा उनको मिल गए, वो राजयोगी थे, वो अपनी झोपड़ी में रहते थे, जमीन के अंदर उनकी झोपड़ी थी लेकिन गेट उनका जमीन के ऊपर था, तो सुबह का वो रोज वो अपने गेट के अंदर बैठ जाते थे। तो विवेकानंद जो पता लगा वो भी उनसे मिलने गए, और कई दिन जाते रहे। तो विवेकानंद के मन में आया कि मेरे गुरु ने मुझे इस तरह की दिशा तो दी, तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप मुझको राजयोग समझा दें। पवारी बोले, पवारी बाबा बोले, कोई बात नहीं, कल आ जाना सुबह को। विवेकानंद का स्वभाव था बचपन से ही, जब प्राइमरी क्लासेस में तब से स्वभाव था कि जो मन में आ गया वो करके ही छोड़ देते। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि टीचर ने इतनी जोर से कान खींचा कि कान ही उखड़ गया, लेकिन जिद उन्होंने तब भी नहीं छोड़ी, क्योंकि स्वभाव होता ना व्यक्ति का, तो मन में आ गया तो आ गया, अब तो करना है उन्होंने। तो सुबह को उठे, पवारी बाबा के पास गए, क्या देखते हैं कि रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु सामने खड़े हुए। अब वो क्या कहते हैं गुरुदेव, नरेंद्र तेरे अंदर कोई कमी नहीं रखी गई है, लेकिन जब तक तू कार्य को पूर्ण नहीं कर लेगा, जिस काम के लिए भी उनका आगमन होता संसार में, जब तक तू कार्य को पूर्ण नहीं कर लेगा, तब तक अंदर वो अवस्था तुझको प्राप्त नहीं होगी। वो चाबी मेरे पास है। खैर वो मान गए नहीं गए उसे, लेकिन अगले दिन वो स्वभाव था ना उनका, अगले दिन फिर उनके मन में वहम आ गया, हो सकता है वो मेरे मन का संकल्प हो। राम का जी गुरु सामने खड़ा हुआ है, अपने मन का संकल्प हो। फिर अगले दिन तैयार हुए, फिर रामकृष्ण परमहंस सामने खड़े हुए। ये प्रक्रिया कई दिन चलती रही, जब तक कि विवेकानंद के मन से वो संकल्प हट नहीं गया कि मैंने पवारी बाबा से। तो आप देखिए, जो गुरु शरीर रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये दोनों शिष्य कैसे थे उनके, जिनका पूर्ण भरोसा गुरु पर था, पूर्ण गुरु प्रायणता उनके अंदर थी, विवेकानंद के अंदर भी और शारदा माँ के अंदर भी। उनके आगे गुरु क्या करिश्मा कर रहा है ये सीखने की। तो वही बात आज भी अप्लाई होती, आज की डेट में भी रामकृष्ण परमहंस आपके गुरु हो सकते हैं, महात्मा मंगेतकर आपके गुरु हो सकते हैं, कृष्ण आपके गुरु हो सकते हैं। तो ईश्वर की उपासना कैसे करनी चाहिए ये उन्हीं से सीखोगे आप, जिसके बारे में महाजी ने इसमें इंडिकेशन दिया। ये मन एक बड़ा कठिन शत्रु है, इसके दमन करने के वास्ते सतमार्ग, मार्ग का मतलब है पूरा, ये सतमार्ग क्या है, ईश्वर की तरफ चलने का रास्ता क्या है, इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, सतपुरुषार्थ, और उस ज्ञान के अनुसार तेरा पुरुषार्थ होना चाहिए, तेरी करनी होनी चाहिए, और निर्मल प्रेम का बोध जरूरी होना चाहिए। तो उस ज्ञान को जब अमल करता है तो अंदर उस प्रभु का प्रेम तेरे अंदर प्रकट होता है, उस प्रभु का अनुभव तुझको अंदर होता है, ये जरूरी है, तभी इस मन रूपी शत्रु से इस जीव को छुटकारा प्राप्त होता है। और ये काम कैसे होता है वो इस कह रहे हैं कि ईश्वर चिंतन जो अंतर्मुख धारणा से किया जाता है उसका जल्दी ही असर मन पर होने लगता है, और ईश्वर प्रेम की शक्ति के बल से अपने आप पर काबू पा लेता है, मगर गुरु वचन का विश्वास अटल होना चाहिए। तो मन जो तो शत्रु है वो मेरे अंदर है, ईश्वर भी अंदर ही है, तो इलाज मन का क्या बाहर होगा, मन का इलाज भी अंदर ही। मन का इलाज मैं करूंगा कैसे, तो मेरी सारी दौड़ तो बाहर की है, सारी पढ़ाई लिखाई, सारी कमाई, सारा व्यापार, लोगों से मिलना जुलना, दुख दूर करने के रास्ते सारे बाहर है मेरे, दुख मेरा आज तक दूर हुआ नहीं, मौत मुझको आके दबोच लेती है, बुढ़ापा आके पकड़ लेता है, रोग मुझको पकड़ लेता है। तो इसीलिए यदि सारे इतिहास को उठा के देखा जाए तो मनुष्य के दुखों का इलाज बाहर नहीं है, वो भी तृप्त हुआ वो अंदर जाकर ही तृप्त हुआ। इसलिए महात्मा मंगेतकर जी के पास क्या रखा हुआ था, कुछ भी तो नहीं था, उनके पास हालत उनकी ये थी कि भूख प्यास नींद से ऊपर थे, खाना वो खाते नहीं थे, पानी वो पीते नहीं थे, रात को सोते नहीं। क्या मनुष्य ऐसा कर सकता है कभी, उसे तो मर ही जाना। तो गुरु की करनी ही ये बात सिद्ध करती है कि वो शरीर है ही नहीं। महात्मा बुद्ध के पास क्या था, कृष्ण के पास भी क्या था, कभी राजगद्दी पे बैठे ही नहीं, लेकिन कितनी सामर्थ्य थी। तो कृष्ण की करनी सिद्ध कर रही है कि वो मनुष्य है ही नहीं। दुर्योधन ने शर्त रख दी उनके आगे कि युद्ध में आप चक्रव्यूह नहीं उठाएंगे, वो सुदर्शन चक्र नहीं उठाएंगे, ठीक है उन्होंने कहा। वो ये भूल गया कि ये तो ईश्वर है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने रथ का पहिया ही उठा लिया, शर्त भी उनकी नहीं गई, लेकिन वो तो योगेश्वर कृष्ण, वो तो ईश्वर है, उसकी बुद्धि भ्रमित है। अर्जुन और युधिष्ठिर होशियार थे, उन्होंने कहा ये तो ईश्वर है, इनको अपनी तरफ कर लो, जीत हमारी पक्की है, ईश्वर को कौन हरा सकता। तो गुरु को जब आप ईश्वर समझकर उसकी बात समझने की कोशिश करते हो, तब आप अपनी ये उपासना पद्धति भी चेंज करते हो। यहां गुरु ने साफ करें कि मन तेरा शत्रु है, वो अंदर है, तुम्हें अंदर ही उसका इलाज करना है। इसीलिए जो पूर्ण गुरु धरती पर आते हैं उनके द्वारा फिर मंत्र प्रकट होते हैं। इसलिए महाराज जी के द्वारा भी मंत्र प्रकट हुआ। ये महामंत्र जो आपका सामने लिखा हुआ है ये 3 दिन के अंदर प्रकट हुआ, ओम ब्रह्म सत्यम ये पहले दिन प्रकट हुआ समाधि में, निरंकारा जन्मा अद्वैत पुरखा ये दूसरे दिन प्रकट हुआ, सर्व व्यापक कल्याण मुहूर्त परमेश्वरायनम स्तम ये तीसरे दिन प्रकट हुआ। अब समाधि की हालत क्या होती है? समाधि में ये इंद्रियां और मन जो है ये जीव का और ये प्राण भी जो श्वास है ये नाद रूप परमेश्वर में लीन हो जाती या कुंडलिनी के अंदर वो लीन हो जाती, उसमें मर्ज हो जाती, उस हालत को समाधि कहते हैं। उसमें ना वो योगी विचार करने में समर्थ हो सकता है, ना कुछ संसार के बारे में या अपने ही शरीर के बारे में जानने में समर्थ हो सकता है, उसका वहां कुछ लेना देना नहीं क्योंकि मन ही नहीं है वहां पर, इंद्रिया ही नहीं है वहां पर। उस हालत में ये मंत्र प्रकट हो रहा है और वो योगी उसको अनुभव कर रहा है, इसलिए इसको अनुभव कहते हैं। श्रवण नहीं कहते, कान ही नहीं हुआ पर श्रवण कहां करेगा, लेकिन उसको अनुभव कर रहा है। जैसे मेरे पेट में पेन हो रहा है तो मैं अनुभव कर सकता हूं, दर्द को मैं सुन नहीं सकता, दर्द को मैं अनुभव कर सकता, इसलिए उस ईश्वर को वो अनुभव करता है नाद रूप परमेश्वर के रूप में, कुंडलिनी के रूप में, इसीलिए उस हालत में ये मंत्र प्रकट हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मंत्रावतार कहा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, क्या कहा, मंत्रो अहम, मैं मंत्र हूं। इसलिए महर्षि रमण कह रहे हैं कि गुरु मंत्र ईश्वर एक ही चीज, तो ये जो गुरु है जो अवतार है वो तो कोई दूसरी बात कह रहे हैं। हम लोग जो लेक्चर धार्मिक लेक्चर सुनते हैं वहां कुछ और बातें बताई जाती है, तो इसीलिए एक गुरु जो मानव रूप में प्रकट हुआ है वो भी ईश्वर का अवतार है, वो आपका गाइड करने के लिए, लेकिन उसी गुरु के द्वारा ईश्वर मंत्र रूप में प्रकट हुआ है वो आपको अंदर ले जाने के लिए प्रकट हुआ है। कि तू अंतर्यामी ईश्वर का संगी नहीं करेगा तो अंदर पहुंचेगा कैसे? इसीलिए बाहर जब मैं गुरु आज्ञा पालन करता हूं तब मैं अंदर जाने की सामर्थ्य प्राप्त करता हूं। इसीलिए महाराज जी की बात करें तो यदि हम तो महाराज जी ने पहला सूत्र क्या दिया, आप प्रेमी सादगी, उन्होंने सादगी की बात कही। अब सादगी को 3 बातें कही कि पहनावा सादा हो, खान पान सादा हो और बोलचाल सादी हो। देखिए कोई मैकेनिकली इन चीजों को अपना भी ले ले क्या वो सादा हो जाएगा? बड़े सादे लोग हैं, एक गांव का व्यक्ति देख लो जहां डेवलपमेंट नहीं हुआ वो सादे वस्त्र पहनता ही है, सादा खाता है और सीधी सीधी बात करता है। चालाक तो शहर के लोग होते, तो क्या वो ईश्वर भक्त बन सकता है? वो हम जानते हैं वो कौन, वो साधारण व्यक्ति है। तो सादगी का मतलब क्या है उनका, अब उनका प्रोग्राम क्या है? उनका प्रोग्राम आपको अंदर ईश्वर तक ले जाना है ना। सादगी का मतलब यह है सत्पुरुष की कि तुझको तेरी जो वासनाएं फैली हुई है, कामनाएं फैली है, उसको तुझे सिकोड़ना है। तो बाहर तो इसी के लिए तो बेईमानियां करता है, इसीलिए चालाकियां करता है, इसीलिए लोगों को धोखा देता है वासना के कारण। तो जब तू वासना तेरी जरूरत ही कम हो जाएंगी तो क्यों धोखा देगा, क्यों बेईमानियां करेगा पैसा कमाने की, क्यों बहुत ज्यादा कमाने की कोशिश करेगा? इसी तरह परिवार आराम से पल जाए इतना ही कमाएगा, बाकी वक्त को बचाकर गुरु आज्ञा पालन करने में लगाएगा, उसके अनुसार जीवन बनाने में लगाएगा। इसीलिए महाजी ने बात कही कि मन में सादगी जब आन समाई तब ही सादा जीवन, तो सादगी वो मन की बात कह रहे हैं। इसका मतलब मन में तेरी इच्छाएं यदि समझ आगे की इच्छाएं बोझ है मेरे ऊपर, तब तू इन इच्छाओं से मुक्त होने की कोशिश करेगा, तब तेरे जीवन में जो सादगी आएगी ये जब प्रोग्राम अपनाएगा तब तू अंदर ईश्वर का स्मरण करने में सफल होगा। क्योंकि सादगी वो इसलिए कह रहे हैं ताकि तू अंदर चैन से बैठ के ईश्वर की याद कर सके, उस मंत्र का जाप कर सके। तो पहली गुरु प्रायणता क्या है, जो शरीर रूप में गुरु प्रकट हुआ है उसकी बात को समझना, उसकी बात को मानना, उस मानकर उसके अनुसार कर्म करने की तैयारी करना। दूसरी गुरु प्रायणता क्या है कि उसने जो अंदर जाने का रास्ता बताया है, जो मंत्र बताया है, उस मंत्र को उसी प्रकार ईश्वर जानना जिस प्रकार तू गुरु को ईश्वर समझ, इस विज्ञान को ही शास्त्र ही समझा सकते हैं, गुरु ही समझा सकते हैं। इसलिए महाजी के द्वारा जब मंत्र प्रकट हुआ तो वाणी भी साथ में प्रकट हुई कि त्रयोदश अक्षर मंत्रिये सर्व सिद्धिदातार जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाए अपार। अपार कहते हैं लिमिटलेस। तो लिमिटलेस तेरा मंगल क्या होता है, कल्याण क्या होता है, मोक्ष। अर्थात जहां वासना तेरी 100% खत्म हो जाती है वो स्थिति तेरी अपार कल्याण की है, अपार मंगल। वही सर्व सिद्धि, जहां एक भी वासना बाकी ना बचे, एक भी इच्छा तेरी अपूर्ण ना बचे, इसका मतलब वासना निवृत्त हो जाए, उसका नाम है सर्व सिद्धि दाता। तो इस मंत्र में वो शक्ति है। और दो मंत्र वाणी क्या करिए, कलह कलेश सब दूर होए। कलह कलेश कहां है, मन के अंदर ही तो है। इसका मतलब मन रूपी दुश्मन को ये मंत्र मार डालता है, भस्म कर देता है। तो कलह कलेश सब दूर होए, पाए ज्ञान तत्व योग। ज्ञान तत्व कौन है, वो परमेश्वर ही। पाए ज्ञान तत्व योग, मंगत तत् अक्षर नित गाइए प्रभु दर्शन होए। ये अक्षर क्या है, ये लैंग्वेज नहीं है, पढ़ने में ये लैंग्वेज लगते हैं, भाषा लगते हैं, लेकिन ये तत् अक्षर है। तत् कहते हैं ब्रह्म को, ईश्वर। तो ये चेतन रूप है ईश्वर का, इसमें चेतना है, इसमें शक्ति है, इसलिए इसमें सामर्थ्य है कि तेरे मन को ये पवित्र कर दे। लेकिन पवित्र कब करेगा ये, जब तू पवित्र करने की कामना करेगा। कि मैंने बहुत संसार देख लिया, पता नहीं कितने जन्म हो चुके, मेरी वासना अभी तक खत्म नहीं। तो ये जन्म मैं वासना से निवृत्ति के लिए मैं व्यतीत करूंगा, गुरु की बात मानकर चलूंगा। ऐसा जो निर्णय लेकर चला है वो फिर इस मंत्र का जब जाप करता है उसका मन साफ होना ही होना है, उसके अंदर ईश्वर ने प्रकट होना ही होना है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं। तो जब ये मंत्र जाप करता है वास्तव में तब ये अंदर दीक्षित होता है। तो दीक्षा क्या होती है, दीक्षा होती है कि जो नाभि चक्र है ये उसका खुल जाता है, जिसको वाणी कह रही है कि नाभ कमल है अचरज थाना, जामे वसया श्री भगवाना, जासे उपजे श्वास का थम्मा, सुरती खेले खेल अचर। तो नाभ कमल जो है, ये हमारा जो नाभि है, ये अचरज स्थान है। क्यों अचरज स्थान है, क्योंकि इसमें भगवान बसते हैं। बताइए भगवान की कैद है क्या, नहीं, लेकिन जिस भगवान का तुझको पहले अनुभव होना है वो इसी में कैद है, उसको कुंडलनी भी कहते हैं। इसको महर्षि रमण कह रहे हैं कि गुरु कुंडलनी ईश्वर एक चीज। तो जब ये इस सिद्ध मंत्र का जाप करते हो गुरु की बात मानकर, मौन होकर, बोलकर नहीं, बोलने में तो ये कर्म इंद्रिया काम करेंगी आपका, तो अंदर मन जाएगा कैसे, मन है अंदर आपका। इसीलिए मौन होकर जब मन इस मंत्र को ईश्वर जानकर अंदर जब प्रेम से उसका स्मरण करते हो, उसका अर्थ नहीं करते, उसके आगे कोई इमेज खड़ी नहीं करते, उस मंत्र को ही ईश्वर जानकर, प्रभु आप मंत्र रूप में हो, मैं आपको याद कर रहा हूं। जैसे किसी मित्र का नाम याद करो आप 5 बार मौन होकर कर सकते हो, उसी प्रकार मंत्र को ईश्वर जानकर जब आप प्रेम से उसकी याद करते हो तो ये मन की सफाई होती है। तो उस मंत्र की शक्ति के बल पर आपका ये नाभि चक्र खुलता है, तब पता लगता है कि जो महाजी कह रहे थे प्रेमी, गुरु वास्तव में शब्द रूप परमेश्वर है जो घटघट व्यापक है, वो शब्द रूप परमेश्वर का अनुभव तुझको प्रथम नाभि में ही होता है, या उस रूप में, या फिर जिसको निरत कह रहे हैं महाजी कुंडलनी रूप में अनुभव होता है। अब ये अंदर का गुरु जब मिल गया तुमको, अब आपका मंत्र भी छूट जाता है। फिर ये आप इस अंदर वाले गुरु को जो आपके अनुभव में आ गया उसके साथ आप लगे रहते हैं। तो ये फिर अगले दर्जे की गुरु प्रायणता है जो आपके अंदर हो। तो ये जो अंतर्यामी गुरु है फिर, जिससे आपका संग मिल गया आपको, ये फिर आपको अंतिम अवस्था ले जाता है, जो रियल गुरु है, जो ब्रह्म है, जिसको महर्षि रमण कह रहे हैं कि गुरु केवल परमेश्वर है और वो केवल एक है। तो गुरु प्रायणता बाहर से शुरू होती है और ब्रह्म तक ले जाती है, लेकिन यदि हमने मनमानी करी, दुनिया वालों की बातें सुनते रहे, उन्हीं से धर्म सीखते रहे, तो सारी जिंदगी हमारी ऐसी निकल जाएगी। धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर हम गलतियां करते रहेंगे और समाज में मानसिक क्लेश पैदा करते रहेंगे, झगड़े पैदा करते रहेंगे, जो धर्म के नाम पर आप देख रहे हैं। तो रियल धर्म समझना है तो पूर्ण गुरु का आश्रय लेकर हमको चलना पड़ेगा, उसके अनुसार ही साधना करनी पड़ेगी, तब अंदर अंतर्यामी ईश्वर हमारे लिए प्रकट होंगे, हमारा उनसे संबंध बनेगा, उनका प्रेम हमको प्राप्त होगा, उनकी कृपा हमको प्राप्त होगी। इसलिए गुरु प्रायणता धर्म सीखने के लिए, उपासना सीखने के लिए, उपासना करने के लिए लाजमी चीज है। इसको यदि आपने ठीक समझ लिया है तो इसको जीवन में अपनाएं। ओम ब्रह्म सत्यम।